हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगले दिन ही सुबह जल्दी योग अपनी पूरी फैमिली के साथ मुंबई के लिए निकल गया। उसके साथ में कृषा, ध्रुव, मलिक, मीरा और वीर भी थे। वहीं राणा मेंशन में इस बात की खबर किसी को नहीं थी कि दो दिन बाद का कहने के बाद योग इतनी जल्दी आ जाएगा। वैसे भी योग ध्रुव के बर्थडे का दिन बीतने का वेट कर रहा था। राणा मेंशन में योग के आने का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इतने साल बाद वो ध्रुव और योग को देखने वाले थे, वो भी बिल्कुल ठीक। उनसे अलग मान्या की अलग ही हालत थी। उसे डर लग रहा था कि योग सब जानता है या नहीं। उसने जिस तरह से घर के लोगों का बाहर निकलना बंद किया था, उसे यही लग रहा था कि योग को मान्या के बारे में पता चल गया है। वो परेशानी में अपने कमरे में चहलकदमी कर रही थी, तभी विराट वहां पर आया। मान्या को परेशान देखकर विराट ने वहां बैठते हुए कहा, अब बस भी करो अपनी जलन को, इतने साल हो गए, तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। योग कितने टाइम बाद ठीक हुआ है, कम से कम आज तो उसके आने पर खुशी मना लो। मैं उस लड़के के आने पर कभी खुश नहीं हो सकती, और ना ही उसके ठीक होने पर, मान्या ने तुनक कर जवाब दिया। उसने फिर अपने पैर की तरफ इशारा करके कहा, आज भी लोग मेरे पैर की तरफ देखकर मजाक बनाते हैं। मुझे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके गोली मारने की वजह से मैं ठीक से चल नहीं पाती हूँ। हाँ तो गलती भी तो तुम्हारी थी, तुम्हें वरदान को नहीं भगाना चाहिए था, विराट ने सिर हिलाकर कहा। उसकी बातें मान्या को और गुस्सा दिला रही थी। वो गुस्से में तेज आवाज में बोली, अच्छा सिर्फ गलती मेरी थी, तुम भी तो मेरे साथ ही गए थे, लेकिन तुम तो उसके बाप हो, तो वो तुम्हें सजा क्यों देगा? तुमने तो वरदान का पता बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन मेरा क्या? मुझे अकेली को वो सजा मिली और वरदान को भी। भाई तुम्हें समझाना मेरे लिए नामुमकिन है, तुम्हें मुंह बनाकर रहना है तो रहो, लेकिन मैं अपने बेटे के ठीक होने से बहुत खुश हूँ, चाहे हमारे पास्ट में रिलेशन कैसे भी रहे हों। मैं इस बात को नहीं भूल सकता कि वो मेरा खून है, विराट ने हार मानते हुए कहा और उठकर कमरे से बाहर चला गया। विराट के तेवर देखकर मान्या को इतना तो समझ आ गया था कि अगर विराट के सामने भी उसके छाया के कातिल होने का राज खुला तो वो युग का ही साथ देगा। इससे मान्या की परेशानी और बढ़ गई थी। मान्या ने अपने माथे पर हाथ रखकर परेशान स्वर में कहा, इससे तो कुछ भी एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी होगी। उस वक्त भी इसने कुछ नहीं किया था, और मैंने ही इससे शादी करने के लिए छाया को रास्ते से हटाया था। छाया जिंदा होती तो ये कभी उसे डिवोर्स नहीं देता और मेरे साथ भी रिलेशन बनाकर रखता। मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन उससे बात तो कर सकती हूँ ना? मान्या ने उसे तीसरे शख्स से बात करने के बारे में सोचा जिसने उस वक्त प्लानिंग में उनके साथ दिया था। वो बाथरूम में गई और किसी को कॉल किया। सामने से दो रिंग के बाद में कॉल कनेक्ट हो गया। मान्या जल्दी से बोली, सुल्तान मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, वो डेविल ठीक हो गया है, मुझे लग रहा है कि उसे मेरे बारे में पता चल गया है, उसने मुझे घर पर होस्टेज बना रखा है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना वो मुझे मार देगा। मान्या ने एक सांस में सब कुछ बोल दिया। उसे लगा सामने से सुल्तान उसकी मदद के लिए कोई जवाब देगा, लेकिन उसे कॉल कट होने की आवाज़ आई। मान्या ने जल्दी से उसको वापस कॉल किया तो उसका नंबर ही बन जा रहा था। मान्या ने गुस्से में अपना मोबाइल फेंकते हुए कहा, साले सबके सब गीदड़ हैं और शेर बने हुए घूमते हैं, एक कल के आए लड़के से डर रहे हैं। इन सबसे अच्छे तो वरदान और अंजलि थे जिन्होंने खुलकर उसका सामना किया। मेरी जान गई तो बचोगे तो तुम भी नहीं सुल्तान। मान्या बाथरूम से बाहर आई। उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं बचा था, तो अब उसने खुद ही युग का मुकाबला करने का सोचा। मान्या जानती थी कि अगर युग नहीं रहा तो उसकी मदद को 50 लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन युग के माफिया किंग होने की वजह से कोई चाहकर भी उसके खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता था। मान्या ने अपनी अलमारी में से गन निकाली और उसे अपने कपड़ों में छुपा लिया। अब वही उसके बचने का एकमात्र सहारा था। वहीं दूसरी तरफ मान्या ने जिस सुल्तान से बात की थी वो उसके साथ बात करने के बाद अपने आदमी के साथ बैठा हुआ था। वो लगभग 50 साल का आदमी था जिसके चेहरे पर गहरी मूछें थीं। मान्या के कॉल को उसके मैनेजर ने भी सुना था। उसे सुनने के बाद उसका मैनेजर सुल्तान से बोला, आपको नहीं लगता आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी? अगर उस औरत ने हमारा नाम युग राणा के सामने बोल दिया तो खामखा हमारी इससे दुश्मनी हो जाएगी, जबकि हमने वो काम सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए किया था। सुल्तान ने अपने मैनेजर को तीखी निगाहों से देखते हुए कहा, वो बता दे कि तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, युग राणा अच्छे से जानता है कि सुल्तान सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। मैं यहाँ कोई माफियागिरी करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। मुझे कोई सुपारी देता है तो बस उसे टपकाना होता है। मुझे नहीं पता था सालों पहले उस हादसे में उसकी मां मारी जाएगी। मुझे अपने दुश्मनों से निपटना अच्छे से आता है। बाकी दुश्मनों और उसमें फ़र्क है, वो डेविल है, माफिया किंग, मैनेजर ने उसे याद दिलाया। सुल्तान ने बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे नहीं लगता वो उसकी कोई बात सुनेगा भी। अगर उसे सच पता चल गया है तो वो उसे एक झटके में मार देगा। उसने वरदान राणा को भी मार दिया जबकि वो उसका रिश्तेदार था। अब तक वो इस सबसे अनजान है कि उस प्लानिंग का तीसरा इंसान मैं हूँ। मान्या के मरने के बाद कोई उसे नहीं बताने वाला, तो ये बेवजह की टेंशन लेना खुद भी बंद करो और मुझे भी मत दो। सुल्तान को वाकई कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो इस सबको काफी नॉर्मली ले रहा था। मैनेजर से बात करने के बाद सुल्तान तो वहां से चला गया, लेकिन उसके मैनेजर को कहीं ना कहीं युग के वहां आने का डर था, इसलिए उसने बचाव की तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी। रात के लगभग 11 बजे के करीब राणा मेंशन के आगे 5 गाड़ियां रुकी, जिनमें 4 नॉर्मल गाड़ी थी और एक बड़ी लग्जरियस मर्सिडीज थी। युग अपने घर पहुंच चुका था। सिक्योरिटी गार्ड ने घर का मेन डोर खोला तो युग की गाड़ी ने अंदर एंटर किया। इस वक्त सभी अपने अपने कमरों में थे। जैसे ही योग अपनी गाड़ी से निकला, सभी गार्ड्स उसके पीछे आ गए और घर पर मौजूद गार्ड्स ने उसे सैल्यूट किया। सबके चेहरे पर एक खुशी और सुकून का भाव था, क्योंकि वो काफी टाइम बाद योग को देख रहे थे। योग ने एक नजर उन सबकी तरफ देखा और फिर अपने कदम विला के अंदर बढ़ा दिए। उसके साथ में कृषा थी, जिसने ध्रुव को गोद में ले रखा था। ध्रुव पहली बार राणा विला में आया था। उनके पीछे मलिक, मीरा और वीर थे, जो अलग गाड़ी से उतरे थे। सेकेंड एंट्रेंस पार करके योग राणा मेंशन के लिविंग रूम में पहुंच चुका था। उसे वहां देखते ही वहां काम करने वाले हाउस हेल्पर जल्दी जल्दी घर के लोगों को वहां बुलाने लगे और कुछ ही देर में पूरी फैमिली वहां पर इकट्ठा थी, सिवाय मानिया के। वो अभी भी अपने कमरे में थी। युग को देखते ही हरलीन जल्दी से तेज कदमों से चलकर उसके पास गई और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने नम आंखों से कहा, बहुत बुरे हो तुम। इतने दिनों में एक दिन नहीं गया कि तुम्हारे ठीक होने की दुआ नहीं मांगी हो, और तुम ठीक होने के बाद में अब हमसे मिलने आ रहे हो। हर चीज का एक सही वक्त होता है बुआ। सही वक्त आते ही मैं सबके सामने खुद पर खुद आ गया, युग ने जवाब दिया और फिर वो उससे अलग हो गया।
युग ने हर्षवर्धन की तरफ देखा। उन्होंने उसे देखते ही अपनी नजरें घुमा ली। युग उनके पास जाता, उससे पहले वो ध्रुव की तरफ बढ़ गए, जो कृषा की गोद में था। हर्षवर्धन ने ध्रुव को कृषा की गोद से अपनी गोद में लेते हुए कहा, तो हमारे लिटिल प्रिंस को अब अपनी फैमिली के बीच आने का मौका मिल गया है, कहकर उन्होंने ध्रुव के माथे पर किस किया। युग जानता था कि हर्षवर्धन उनसे नाराज है, तो वो उनसे मिलने के बजाय शब्द के गले लगा। शब्द ने उसे कुछ नहीं कहा, वो भी युग को ठीक देखकर इमोशनल हो रहा था। उसके बाद कृषा सारा से मिली और फिर अलीजा और अलीशा से। वहां कुछ देर तक बिल्कुल इमोशनल माहौल रहा। बंधन भी वहीं पर मौजूद थी, वो भी युग और कृषा से मिलकर काफी खुश हुई थी। युग के लिए ये मूमेंट बीत चुका था, क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए नहीं, यहां मान्या को उसके किए की सजा देने के लिए आया था। युग ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा तो मान्या वहां पर नहीं थी। मान्या को वहां न देखकर युग के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। युग ने बंधन की तरफ देखकर कहा, मॉम कहाँ है बंधन? क्या वो मेरे आने से खुश नहीं है? मुझे लगा मुझे उस हाल में देखकर उनके दिल की नफरत खत्म हो गई होगी। युग के मुंह से मान्या के लिए मॉम शब्द सुनकर वहां सब हैरान थे, तो वही कृषा और मलिक को मन ही मन हंसी आ रही थी। ऐसी बात नहीं है भाई, वो बस थोड़ा ठीक महसूस नहीं कर रही थी। मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ, बंधन ने मुस्कुराकर कहा और मान्या को बुलाने के लिए चली गई। इससे पहले कि मान्या वहां पर आती, युग ने मीरा की तरफ देखकर कहा, मीरा वीर और ध्रुव थक गए होंगे, तुम जाकर उन्हें सुला दो। मीरा दोनों बच्चों को लेकर चली गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर युग क्या करना चाह रहा था। उसने बच्चों को वहां से भेजा था, इसका मतलब वो कुछ ऐसा करने वाला था जो वो बच्चों के सामने नहीं कर सकता था। अब तो युग को बस मान्या के नीचे आने का इंतजार था।